Hare Krishna lecture by His Grace Kesha Murari Prabhuji on 11th of August 2011 on Balaram Katha.
जय विष्णुपाद परमहंस प्रजाचार्य श्रोतवाइन ग्रस्त भजन अरविंद भक्तिदान्त स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत विराधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधाराधिकरण भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू गुरु गुरांगन। ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बलराम कथा श्रीमद् भागवतम से। हरे कृष्ण। तो सब भक्तों का स्वागत है आज इस कथा में। हम सब लोग पिछले एक दो दिन से शायद बलराम कथा का श्रवण कर रहे हैं और उससे पहले वेणु गीत, और जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण की वेणु के विषय में हम सबने सुना उसका इफेक्ट वट एवर इट इज। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम या राम जितने भी एक्सटेंशन है भगवान के, इन सबका जो उद्देश्य है वो यही कि इस भूतल में, इस भौतिक जगत में सभी कंडीशन सोल्स को अपने से अट्रैक्ट किया जाए, अपने से आकर्षित किया जाए, अपनी लीलाओं से आकर्षित किया जाए। और फिर क्योंकि भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान, भगवान की कथाएं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला, जो बाल लीलाएं हुई, उन सब लीलाओं में हमारे अगर हम उसे श्रवण कीर्तन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे एक एक अनर्थों का जो है उसमें निवारण होना शुरू होता है। तो एक ही कथा पूतनावध का, बकासुर का इत्यादि जितने भी असुर मारे भगवान ने, उन कथाओं का अगर हम श्रवण करते हैं तो फलश्रुति में बताया है कि उससे हमारे विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े अनर्थ जो कि हमें हमेशा घेरे रहते हैं वो जो है समाप्त हो जाते हैं। और भगवान की सारे एक्सटेंशन जिनका एकमात्र उद्देश्य इस भौतिक जगत में भक्तों को या अभक्तों को अपने से अट्रैक्ट कर उनको अपने धाम वापस बुलाना, और दूसरा भगवान की इच्छा कि भगवान जब जब, क्योंकि स्वराट हैं, जब जब जैसा जैसा आनंद लेना चाहते हैं, लीला करना चाहते हैं, हाथों में खुजली होती है तो लड़ाई करना चाहते हैं और जय विजय को इनसे ऑफेंस करवाते हैं, चार कुमार को तुलसी की सुगंध सुंघवाते हैं, उनका वहां पर वैकुंठ में आना और उनके द्वारा उनको रोके जाना और फिर उनका नीचे आना, और फिर भगवान का भी हर युग में नीचे आना ताकि कुछ फाइट की जाए, कुछ लड़ाई की जाए। क्योंकि ये सब चीजें भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में, जहां पर कि केवल और केवल अधिकतर सभी लोग माधुर्य में और वात्सल्य में और सांख्य इस तरह के लोग हैं, इस रस में इसका आस्वादन कर रहे हैं, तो वहां पर इन सबका जो है नहीं चलता सिस्टम। वहां पर किससे लड़ाई करें, करनी पड़ती है तो ग्वाल बालों से, छोटी छोटी बात पर, है ना। जैसे भगवान कृष्ण और बलराम भी अलग अलग पार्टी बना लेते हैं जब खेलना होता है, तो है ना। प्रलंबासुर का जो वध हुआ उसमें यही था, जो गेम्स हम यहाँ खेलते हैं वो सारी ऊपर से कॉपी की गई है, कॉपी पेस्ट है, यहाँ पर बस अजीब ढंग से खेला जाता थोड़ा। तो अलग अलग पार्टीज हैं और उसमें कृष्ण और बलराम ने अपनी अपनी अलग अलग पार्टी बनाई है, बीच में जो हम लोग एक मूवी देख रहे थे प्रलंबासुर का जो ना, उसमें रस्सी खींचते हैं और यरस्तकशी आरएसएस वाले भी खेलते हैं अपनी शाखाओं पे, है ना। खेलते जी आप, मैंने भी खूब खेला है। तो रस्साकशी जो होता है उसमें आधी टीम इधर और आधी टीम उधर, और इस तरह कृष्ण ने भी अपनी पार्टी बनाई और बलराम जी ने भी अपनी पार्टी बनाई, और उसमें जो है नाना प्रकार के नारे नहीं लगाए गए जैसे उसमें लगाते हैं, इधर जो है खूब जो है दम लगाया गया। और अचानक जो है प्रलंबासुर जो कि भगवान को मारने के लिए आया था, तो उसने जो है उसको भी टीम में शामिल कर लिया गया और वो कृष्ण की टीम में हो गया। उसमें होता क्या था कि जैसे जो टीम हारती थी तो उस टीम को, विजय टीम को अपने कंधे पर लेकर जाना पड़ता था, तो अगर बच्चों ने खेला हो तो कोई दूसरे ढंग से खेला होगा, बचपन पत्थर मारकर जहां तक पत्थर गया वहां तक कंधे में बिठा के जाते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा गेम अलग है, इसमें क्या है कि रस्सी खींच रहे हैं और एक दूसरे को हराने का मुख्य उद्देश्य है, और इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण की टीम हार गई। पूर्णमा सबको भी लगता है कि वास्तव में यार कृष्ण जो है ज्यादा इतने बलशाली नहीं है, बलराम हट्टा-कट्टा लग रहा है। इसलिए कई बार ज्यादातर असुर जो हैं बलराम के पीछे पड़ जाते थे। जब धेनु का असुर जो थे उनको लगा अरे ये लड़का जो है ज्यादा हट्टा-कट्टा है। कई बार असुर लोगों को लगता था कि ये ज्यादा बलशाली, ये बेचारा ग्वाल बाल छोटा सा है। तो भगवान की जो कद काठी थी, भुजाएं थी, उसमें बड़ा बल था, तो हर कोई सोचता था कि इससे लड़ने में कुछ मजा आएगा। तो ऐसे परलम्बासुर हारे और उन्होंने सबने अपने कंधे पे बिठाया, तो परलम्बासुर ने बलराम को कहा इसको जो है मैं जरा घुमा के लाता हूं। तो बलराम जी को अपने कंधे पे बिठाया और चल पड़े, भागने लगे सब लोग। परलम्बासुर तो आया था भगवान को मारने के लिए, इसने जो है सीधा रास्ता ना लेकर उस ग्रुप से अलग कर लिया अपने, ठीक है ना, और बलराम जी को लेकर कहीं कोने में चला गया। बलराम ने कहा तुम ये कहां ले जा रहे हो मुझे, तो हंसने लगा। आसुरी हंसी आप जानती कैसे हंसते हैं तो इस प्रकार हंसा और धीरे धीरे से अपना वजन और शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। बलराम दिखा रहे ये मुझे मारने आया, इसका मतलब भगवान तो सब जानते ही हैं लीला करनी। तो उन्होंने भी जो अपना वेट बढ़ाना शुरू करा बलराम जी, तो उसको भारी लगने लगे वो, और उसके बाद इतना बड़े हुए परलम्बासुर और भगवान भी जो है एक बड़े जोरदार घूसे से जो है उसके सर पर मारा, उसको सारा बल निकाल दिया की बारी में। इतना बड़ा ड्रामा जो है घूसे में खत्म कर दिया। भगवान ने अपने अवतारों में जब जब असुरों की पिटाई करी है तो एक झापड़ में, एक घूसे में, एक थप्पड़ में, इस तरह खत्म कर दिया सबको। जब ये था नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप का युद्ध था, उसमें कई बार भगवान थोड़ा सा सीन को थोड़ा लंबा कर देते थे, कुछ सीन में कराए, ऊपर से देवता लोग देख रहे होते थे क्योंकि उनको भी पूरा यकीन नहीं होता कि ये जो है मार देंगे कई बार ऐसा होता था। और हिरणाक्ष के समय भी या हिरण्यकश्यप के समय भी जब भगवान उससे थोड़े पंगे ले रहे थे, थोड़ा लंबा कर रहे थे युद्ध को, तो देवता लोगों को बड़ा संकट से हो जाता था जब देखते थे अरे फिर से खड़ा हो गया भगवान को मारने के लिए, मतलब मरा नहीं अभी तक। और फिर सूर्य के अस्त होने पर इनकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं, तो देवता लोग बोल रहे थे भगवान जल्दी मारो इसको, नहीं तो ये अस्त होने के बाद तो ये और बलशाली हो जाएंगे लोगों, और फिर तो शायद भगवान को ना मार दो, है ना तो देवता लोग बेचारे हमेशा टेंशन में रहते थे। लेकिन भगवान कभी इधर से मारे, कभी उधर मारे, कभी हाथ गला पकड़ लें उसका, कभी छोड़ दें, छूट जाए तो उनके फिर पसीना आ जाता था देवताओं के ऊपर से कि ये क्या हो गया, छूट गया, अब हमारी हमारी शामत नहीं है, अब ये बच गया तो इनको मालूम है कि हमने बुलाया भगवान को, हमने प्रार्थना की थी। जैसे होता ना कि झगड़ा हो जाए किसी का तो किसी को बुलाकर लाकर पड़ेगा, और वो अगर ठीक ढंग से उसकी मरम्मत ना करे या पुलिस वाले उसकी मरम्मत ना करें या ठीक ढंग से उसको वो ना करें तो बेचारा जो दूसरा व्यक्ति जो बुलाकर लाया था उसकी जान बनी रहती, मुझे बाद में मारेगा तो एक बार ऐसे हुआ, एक व्यक्ति मार रहा था, एक व्यक्ति बहुत मोटा लंबा चौड़ा व्यक्ति को खूब पिटाई कर रहा था उसे, लेकिन रो भी रहता था, लोग आए भी तो उसको मार भी रहे रो भी रहे। कहता हाँ, कहते रो क्यों रहे, कहते ये खड़ा होगा तो मुझे बहुत मारेगा इसलिए मैं जरूर रो रहा हूं। तो यहां पर जो है भगवान जो है कई बार इस तरह करते, थोड़ा सा युद्ध का सीन थोड़ा लंबा कर लेते थे तो देवताओं को जो पसीना आ जाता था, और जब भगवान एक थप्पड़ मार देते थे वो गिर जाता था धराशायी, होता खून निकलने लगता था मुंह से, तो देवता जयघोष करने लगते थे। अचानक देखते थे फिर खड़ा हो गया तो फिर से पसीने आ जाता, अरे मरे नहीं, ये तो सच में नहीं मरेगा ये। तो इस प्रकार भगवान की सुंदर लीलाओं में, युद्ध की लीलाएं बड़ी वो थी। तो परलम्बासुर को भी जो है भगवान ने एक गुस्से सर पर मारे, उसका जो है न्यूरोसर्जेंट सर्जन जो है भगवान ने उसका जो है कर दिया उसका ऑपरेशन। इस प्रकार परलम्बासुर मारे गए। और इस प्रकार बलराम जी जो हैं, और एक्चुअली जब तक हम सिद्धांत ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे, एक बार बिमला प्रसाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई थी, जिस दिन रामनवमी थी तो उन्होंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति राम का भक्त भी है और राम को या विष्णु तत्व को तत्व से नहीं जानता, तो वास्तव में वो कहने को राम भक्त है वैसे राम भक्त नहीं। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में इन भगवान के इनकार्नेशंस को तत्व से नहीं समझता, अब तत्व से समझने का मतलब वही है क्या कि किस प्रकार सृष्टि के आरंभ में एक ही व्यक्ति थे, वो थे 15 साल के और कुछ महीने के भगवान श्री कृष्ण सामने रहे, उनके ये एक्सपेंशन हैं बलराम जी और भगवान कृष्ण जो अवतार लेते हैं जब धाम में द्वारका में जब 16,000 विस्तार किए अपने, तो प्रकाश विग्रह बोलते हैं, प्रकाश एक्सपेंशन भगवान के, जिसमें कि भगवान अपने जैसा ही रूप, अपने बराबर ही शक्ति और दो हाथ वाले रंग भी अपने जैसा, तो इस प्रकार के रहता है उसे प्रकाश बोला जाता है, प्रकाश एक्सपेंशन। लेकिन जिन एक्सपेंशन में भगवान के रूप में चेंज होता है वो, और विष्णु तत्व ही होता है वो, विलास कहलाता है, ऐसा प्रभुपाद जी कृपट में लिखे हैं। तो विलास और प्रकाश में अंतर क्या है कि जो प्रकाश है वो भगवान श्री कृष्ण के डायरेक्ट एक्सटेंशन है, जो कि उन्हीं की तरह रंग, उन्हीं की तरह रूप, उन्हीं की तरह बार शक्ति, और जो प्रभाव है, सॉरी प्रभाव विलास, उसमें जो है भगवान का जो रूप है उसमें थोड़ा चेंज होता है, रूप में चेंज। जैसे कृष्ण और बलराम में केवल रंग का फर्क है, अन्यथा एक ही शक्ति के रूप में, उन सब चीजों के रूप में। और नारायण कहें या संकर्षण इत्यादि के एक्सपेंशन की बात करें तो इनमें सबके चार हाथ हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के कितने, सदैव दो। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो भगवान और उनके विस्तारों में होती है। तो जो बलराम जी हैं उनका जो उद्देश्य है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी कह श्लोक चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कि ईश्वर केवल एक है और वो कौन है, कृष्ण। आर सब भृत्य, भृत्य का मतलब सेवक, दास, और जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं, भगवान के दास हैं। अब जब ये श्लोक बोला जाता है या ये बात पढ़ी जाती है, तो जब हम लोग नए भक्तों के सामने इस बात को बोलते हैं कि कृष्ण केवल भगवान है और बाकी सब दास हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो व्यक्ति देवताओं से जुड़ा है, देवी देवताओं से जुड़ा है, तो उनको बड़ा मुश्किल लगता है कि किसी को भगवान माने और बाकी सबको उनका दास माने, मतलब जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वो दास हैं उनके। तो एक तो ये समझ में नहीं आता और काफी समय लगता है इसको समझने में। और जब भक्त हैं जो कि कुछ समय हो गया भक्ति करते हुए, ग्रंथों के इत्यादि को पढ़ते हुए, तो उनको ये भी थोड़ा देर बाद समझ आता है कि किस प्रकार भगवान के और एक्सटेंशन भी उनके दास हैं, कृष्ण के। ब्रह्मा माननीय, विष्णु, शिव माननीय दास हैं, बट ये भी बड़ी मुश्किल से माना जाता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इतने सारे एक्सपेंशन की बात करते हैं, भगवान के इतने सारे विस्तारों की बात करते हैं, या जो इतने सारे अवतार हुए भगवान के, वो भी भगवान के दास हैं, ये नहीं समझ आते। अब बलराम, क्योंकि जैसे हमने बताया कि कोई डिफरेंस नहीं है भगवान कृष्ण में उनमें, लेकिन उसके बावजूद भी बलराम क्या है, भक्त भगवान है। किस लिए वो है, वो भगवान है भगवान, बट क्या है, वो भी दास के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपना विस्तार कर रहे हैं। मुख्य पांच अवतार जो है भगवान के हैं बलराम जी के, जिसमें महासंकर्षण, ये वो संकर्षण है जिनसे एक्सटेंशन होता है आगे बलराम जी का, जो पहला एक्सटेंशन के बाद, और ये महासंकर्षण जो है तीन विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं। तो तीन और हैं, कारण दक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। इन तीनों के भी अलग अलग काम है। कारण दक्षाय विष्णु अपने रोम छिद्रों से श्वास छोड़ने से ही इस अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। गर्भदक्षाय विष्णु उन सब ब्रह्मांडों में एंटर करते हैं अपने पसीने से, उस ब्रह्मांड को आधा भरकर उसमें शयन करते हैं। और जितने भी जो है विस्तार हुए इन ब्रह्मांडों के, इन ब्रह्मांड में जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं उन सब में शिरोदक्षाय विष्णु जो है परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। और फिर शेष, जिसे अनंत भी बोला जाता है, अनंत शेष, इनके अनंत फन है, यूं कह सकते, वैसे तो कई जगह बताया गया हजार फन है, बट बोला जाता अनंत फन है। तो वो जो है इन सारे ब्रह्मांडों को अपने हुड्स पर टिकाए हुए हैं। साइंटिस्ट लोग इसको कौन सा बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, कि हर चीज जो है नीचे आके गिरती है, बट ये बल क्या है, ये वो फोर्स है, वो शक्ति है जो शेष के जो सर पर ब्रह्मांड टिके हुए हैं, ये वो शक्ति के कारण सब चीजें उस पर टिकी हुई हैं। तो इस प्रकार पांच विस्तार हैं, और जो शिरोदक्षाय विष्णु भी हैं, ये वो विष्णु हैं जो इन ब्रह्मांडों में जब जब उत्पात मचता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, ये भक्तों की रक्षा करनी है, तो श्री रुद्रक्षय विष्णु नाना प्रकार के अवतारों में प्रकट होते हैं। इस तो अब कोई व्यक्ति कहेगा फिर कृष्ण का तो कृष्ण तो पिक्चर में है ही, अगर सारे एक्सपेंशन बलराम जी के ही हैं, सारे के सारे विस्तार जो इस धराधाम पर हो रहे हैं बलराम जी के हैं, वास्तव में बलराम जी के, क्योंकि भगवान का केवल एक काम है, क्या है वो, बांसुरी बजाना है ना, आलसी नहीं है, कई बार हम भी काम नहीं करेंगे कल से बांसुरी बजाएंगे। भगवान कृष्ण का काम है केवल आनंद लेना या आनंद देना अपने भक्तों को, दैट्स ऑल। और ये जो इतना सारा जो तामझाम भगवान ने बनाया है ना, कई बार भक्त लोग बोलते हैं इतने कष्ट इतने दुख आप इतने लक्ष्य में बोलते हैं, फिर भगवान ने सब बनाया क्यों, है ना। तो भगवान को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते या कोई अपील नहीं कर सकते, ये सारी चीजें है ही नहीं कहीं पर। भगवान को बोला गया श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में स्वराट नाम से भगवान का जो है बोला गया कि स्वराट का मतलब जो फुल्ली इंडिपेंडेंट, कुछ भी कर लें कभी भी कर लें कहीं भी कर लें, कोई रोक टोक नहीं। आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने इतने छोटे से बच्चे को क्यों उठा लिया, इसने क्या किया था, अरे छोटा बच्चा आपको दिख रहा है, छोटा बच्चा अभी 2 साल पहले तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, पिछले जन्म में बड़े पाप कर रहा था ये, जिस नेता को आप गालियां दे रहे थे वो नेता आप ही के घर में पैदा हो गया गलती से हो सकता है इस तरह में, और वो उसको जल्दी मरना था। तो सारा का सारा कर्मों का जो है हेर फेर है पूर्व जन्म, तो ये सारे के सारे विस्तार और भगवान बलराम जो है उनके बाद ये सारे विस्तार हैं, पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टेशन है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन बाहर का और अंदर का भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये सारे भगवान का ही एक विस्तार है। यहां तक कि जैसे कई बार बोलते जब रास लीला हुई बताते कितनी गोपियां थी, 30 करोड़ गोपियां उपलब्ध वहां पर उपस्थित थी, और बताते 30 करोड़ गोपी जब इस तरह नाच रहे, भगवान घेरे में नाच रहे थे, एक बार ये भी बताया गया कि लाइक हर 2 गोपी के बीच में कृष्ण थे, तो कितने कृष्ण और कितनी गोपियां हुई, हाँ जी 15 करोड़ गोपियां और 15 करोड़। देखिए अगर आप वैसे कागज पे बनाकर देखिए 30 करोड़ गोपी और 30 करोड़ कृष्ण, भगवान को ऐसे क्या कमी पड़ी है कि 15 करोड़ तो कर ली 15 करोड़ और ना करें और झगड़े थोड़े कराने थे गोपियों में इतने 15 करोड़ एक्सपेंशन कर लिए उसके बाद 15 करोड़ छोड़ दिए नहीं, तो आप अगर बनाकर भी देखेंगे सर्कल तो आप गिनेंगे, जो एक फोटो भी देखेंगे उसमें भी उतने कृष्ण है उतनी राधा रानी, तो सॉरी गोपियां हैं। तो कई बार लोगों को लगता है सीधा दिमाग में ये आता नहीं आधे कृष्ण होंगे, नहीं वो 2 के बीच में एक बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 अलग अलग घूम रहे दोनों, इस तरह 2 के साथ अलग अकेले घूम रहे कृष्ण नहीं, वो हर 2 के बीच में एक है, और नृत्य में भी आप देखेंगे तो पूरे बनते हैं बनाकर देखिए। तो इस प्रकार 30 करोड़ गोपियां यमुना के किनारे जो है भगवान के साथ रास लीला कर रही है। आप कुछ सोचिए 30 करोड़ गोपियां यमुना किनारे कैसे आ सकती हैं भाई, है ना, वो ओमेक्स वाले प्लॉट खरीद रहे हैं, ये सब प्लॉट खरीद रहे हैं, इतने जगह ही नहीं होगी, 30 करोड़ कैसे आ सकते हैं, इतने सारे लोग वहां पर हैं, अगर तो पूरा का पूरा वृंदावन ही भरा हुआ समझ लीजिए उनसे, कहां यमुना किधर कहां कितना वृंदावन, 30 करोड़ लोग अगर वैसे खड़े हो जाए तो 184 कोस तो ऐसे ढक जाए नहीं जी, जिसके परिक्रमा हम लोग लगाते हैं, 30 करोड़ लोग कम थोड़ी होते हैं, ऊपर से 30 करोड़ कृष्ण भी हैं और फिर डांसिंग स्पेस भी तो चाहिए, डांस फ्लोर भी तो चाहिए। तो यहां पर बलराम जी की बात आती है, बलराम जी क्योंकि धाम के रूप में भी अपने आपको एक्सपेंड करते हैं, तो बलराम जी अपनी अचिंत्य शक्ति से उस स्थान को बड़ा कर देते हैं, सारा धाम। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में हेल्प करने के लिए भगवान को धाम के रूप में न विस्तार करते। अब ये समझ नहीं आया किसी को, बड़ा मुश्किल है समझना, अचिंत्य हम लोग आज तक आत्मा तो समझ नहीं पाए, है ना। 16 माला करे, कोई 64 करे, कोई 192 करे, हमारे जैसे व्यक्ति आत्मा को तो रियलाइज कर नहीं पा रहे। क्योंकि आत्मा को रियलाइज करने का मतलब क्या है कि फिर व्यक्ति को तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने मन की गतिविधियां, हवा, इन सबको तो इन आंखों से देख नहीं पाते। इतनी सारी संस्थाएं केवल इसलिए खुल रही है कि आओ आपको भगवान दिखाएं। नारद मुनि जी को केवल एक झलक मिली थी हृदय में भगवान की, पागल हो गए थे वो, कहां है भगवान, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। इतना ज्यादा उन्होंने जो है विलाप किया, इतना ज्यादा उनको देखना चाह रहे थे दोबारा, एक बार दिखे बस, झलक दिखाई चले। यहां लोग कहते हैं मुझे सपने में ना भगवान दिखे थे। और अगले दिन मीट की शॉप पे खड़े हुए आप। बड़ा अजीब है मतलब ना। खैर लोग अज्ञानता में ज्यादा रहते हैं, वो जो देखते हैं कंकॉक्शन है, मन जो है वो कभी कभी कुछ ना कुछ चित्र दिखा देता है। लेकिन भगवान दिखने का मतलब ये है कि फिर आप इस जगत के नहीं हो। इतनी सारी संस्थाएं, इतनी सारी लोगों को भगवान दिखा दी, पता नहीं कहां कहां से पकड़ के ऐसे माथे पे कुछ करके। जिसने भगवान, मैं आत्मा सोल रियलाइजेशन की बात कर रहा हूं, गॉड रियलाइजेशन की कर रहा हूं। सोल रियलाइजेशन पर ही व्यक्ति यहां का नहीं रहेगा, उसके कर्म, उसकी क्रिया, उसकी मुद्रा, उसके वाक्य, उसका सोचना सब बदल चुका होगा। उसको लोग पागल बोलेंगे, सॉरी पागल लोग उसे पागल बोलेंगे। रियल पागल नहीं, पागल कौन है जो अपने को भुला चुके हैं, जिन्हें मालूम नहीं है कौन, सर पे चोट लग गई है ना, याददाश्त चली गई है, मालूम नहीं हम कौन है, तो एक अलग धरातल पे काम कर रहे हैं। तो जिसने ये रियलाइज कर लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, पूरा जीवन क्या, दो चार जीवन भी लग जाए भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, इतना भी लग जाए रियलाइजेशन के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। तो जिसको ये मालूम पड़ गया मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो उसके जो क्रियाकलाप हैं फिर वो डायरेक्टेड होंगे, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन के बाद गॉड रियलाइजेशन, या जो उसने वो भी किया उसके साथ ही होगा। कारण क्योंकि उसको मालूम है कि ये आत्मा किसका अंश है। इस प्रकार फिर उस व्यक्ति की जो है क्रियाएं, उस व्यक्ति की इच्छाएं, उस व्यक्ति के कार्य सब बदल जाते हैं। इसलिए भगवान का रियलाइजेशन, या भगवान को जो हम लोग सोचने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, वास्तव में हम तो क्या समझेंगे। बलराम जी अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं, अनंत शेष है उनके, अनंत फन है उनके, और बताते हैं कि वो भगवान के चरित्र का, उनकी लीलाओं का, जब से वो हैं, अब कब से हैं कोई डेट फिक्स नहीं है, एडी ओडी कुछ नहीं है उनका, क्या है, जब से हैं तब से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। कौन? अनंत शेष बलराम जी, अपने अनंत मुखों से भगवान का गुणगान चल रहा है हर जगह, भगवान की क्वालिटीज को गिन रहे हैं, भगवान के रूप का गुणगान कर रहे हैं, और आज तक नहीं कर पाए पूरा। श्रीमद् भागवतम ऐसा वर्णन है कि शेष भी अपने इन फनों से भगवान का गुणगान नहीं कर पाया, उनको जान नहीं पाया, क्योंकि भगवान लिमिटेड नहीं है। इंडिया में जिस सारी कंपनी लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड या वैसे लिमिटेड, भगवान अनलिमिटेड है। अगर भगवान लिमिटेड हो गए तो फिर वो भगवान नहीं है। हाँ, किसी लीला के तहत चलकर कुछ दिखाना चाहे वो बात अलग है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो, भगवान का जो ज्ञान है, ये बढ़ता रहता है, खत्म नहीं होता, कोई फुल स्टॉप नहीं है जी। ओके, मैंने पीएचडी कर ली, अब पढ़ाई बंद, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब स्कूल जाना बंद, हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन भगवान के विषय में ज्ञान, भगवान के विषय में कथा, भगवान के रूप का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन, ये कभी खत्म नहीं होता। जितने एक्सपेंशन या श्रीमद् भागवतम में जितना विस्तार हमें मिलता है, भगवान का लिमिटेड नहीं है। श्रीमद् भागवतम 18 कैंटो दैट्स ऑल, खत्म नहीं। अगर 18 कैंटो में श्रीमद् भागवतम और ये सब चीजें खत्म हो जाती तो क्यों इतने गोस्वामी जन इतनी टीका और टिप्पणी करके भगवान की और लीलाओं का वर्णन करते। इसके अलावा भी, क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, तो सारे के सारे चीजें जो है भगवान का ज्ञान को, भगवान के रूप को, उनकी लीलाओं का वर्णन करने में असमर्थ है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करना या मेरे बारे में जानना आसान नहीं है। भक्त्या माम अभी जानना, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है या भक्त ही मुझे जानते हैं। क्योंकि भक्त जो है जब भगवान से तदाकार, किस सेंस में, जब ये रियलाइज कर लेते हैं कि हम भगवान के दास हैं और जो क्वालिटीज आत्मा की हैं वो क्वालिटीज उनके अंदर बाहर से भी दिखने लग जाती हैं, और फिर वो सब लोग, भक्त लोग, उस भगवान, उस अनंत भगवान को, उस अनलिमिटेड भगवान को कुछ अंश तक रियलाइज कर पाते हैं। तो बलराम जी यहां पर भगवान का गुणगान कर रहे हैं अपने अनंत शेष से, फनों से, आज तक रुके नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई पानी पीने के लिए नहीं गए, कहीं कुछ नहीं गए, आज तक कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। तो उन लोगों का कहना है क्या जिनको मिला है चमड़े की आंखें, है ना, कंटेमिनेटेड बुद्धि, 15 साल पढ़ा भी तो उल्टा, है ना, बीए ना, उल्टा पढ़ा, जो पढ़ा वो इस संसार से रिलेटेड पढ़ा, ये और कंटेमिनेशन, और ऐसे व्यक्ति या ऐसे साइंटिस्ट लोग प्रयास करते हैं फिर भगवान को ढूंढने का, देखा नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार बलराम जी अपने खुद के एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि भगवान को जानना या समझना किताबों के द्वारा या इस प्रकार नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए, जो बलराम जी कर रहे हैं, सेवा भाव, भगवान की सेवा करना। भगवान कृष्ण का पहला एक्सपेंशन हमें यह बता रहा है कि सेवा करनी, और एक्सटेंशन भी ये बता रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की सेवा और हम लोगों की सेवा में जमीन आसमान का अंतर है। उन लोगों की सेवा जब जो आध्यात्मिक जगत में जो लोग सेवा कर रहे हैं वो सेल्फलेस हैं, सब के सब लोग हर समय भगवान की सेवा में आनंद लेते हैं, कोई मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं है, कोई टारगेट सेट नहीं है उनके। लेकिन जैसे ही इस ब्रह्मांड में एंटर करते हैं, इस ब्रह्म ज्योति के बाहर जो यहां पर इन ब्रह्मांडों में आते हैं हम लोग, तो यहां पर इवन डेमी गॉड्स भी सेल्फलेस सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें करना चाहिए, लेकिन जब जब भूल जाते हैं कुछ देर सेवा करने के बाद तो अहम का भाव आ जाता है। इसलिए जब जब भगवान ने अपने भक्तों को, चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने भक्तों को जो किसी कोड़ रूप ठीक कर दिया, किसी कुछ कर दिया, वासुदेव जब ठीक कर दिया, उन्होंने भगवान अपने मेरे को इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, अब होगा क्या, मुझे इसका मान, इसका घमंड हो जाएगा, तो मैं आपको भजन कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा फिर आप सदैव भगवान के प्रचार में लगे रहो और हरे कृष्ण महामंत्र जपो, इससे आप जो है हमेशा जान पाओगे कि हम मेरा संबंध आपके बीच में। डेमिगॉड्स बेचारे भी प्रयास करते हैं सेल्फलेस सेवा का, लेकिन नहीं कर पाते, कुछ समय के बाद उनको रियलाइज हो जाता है, अरे नहीं, ये तो मैं ही कर रहा हूं, ये तो मेरे द्वारा ही हो रहा है, भगवान कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। और फिर ऐसे समय पर फिर भगवान जो है ऐसे लोगों का मान अभिमान तोड़ने के लिए लीलाएं करते हैं, समझाते हैं। इंद्र कितनी बार लड़ेगा वैसे, 2-3 बार भागवत में आ गया, जब गोवर्धन पर्वत पर खूब वर्षा करी, नहीं मान रहे थे, बृहस्पति की बात नहीं मान रहे हो, किसी की बात नहीं, अहंकार इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति नहीं समझ पाता कि कौन क्या है, और इस कारण से अपराध शुरू होते हैं। इसलिए डेमिगॉड भी जब जब अपराध करते हैं या सेवाओं से विमुख होते हैं इस संसार में, फिर ये सारी समस्याएं शुरू होती है। जब जब जिसके पास जैसे जैसे पद बढ़ता है, ये पद आता है, अधिकार उसके हाथ में आता है, तो तुरंत ये नेचर है व्यक्ति की, ये लिविंग एंटिटी की, तो उसको अटैच होना ही पड़ता है, वो आसक्त हो जाता है। अगर वो पूर्णतः ज्ञान में नहीं है, भगवान की कथा का हर समय श्रवण इत्यादि ना कर वो अपने को रियलाइज नहीं कर पा रहा, कि क्योंकि कथा का श्रवण का मतलब है कि कृष्ण को कर्णों से प्रवेश करवाना, कृष्ण को हृदय में प्रवेश कराने का मतलब है कि जो हमारा हृदय इस दूषण से जो दूषित है इस भौतिक जगत के, उसको हमेशा शुद्ध करना। तो जब हम लोग शुद्ध होते हैं, हमारा चित्त शुद्ध होता है, तो चित्त शुद्ध से हम लोग क्या चीज क्या है वो पहचान सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो भौतिक जगत में जब जब व्यक्ति को पद प्राप्त होता है, और ये सच में है कि कंडीशन सोल्स के साथ ये घटना होती ही है, जब जब जहां जब जिस पर जितना भी अधिकार है वो वहां पर पूरा चलाने का प्रयास करता है। और फिर कारण ये होता है कि कुछ समय बाद ऐसे भक्त लोग भी जब इस प्रकार अनर्थों को नहीं पहचान पाते या समझ पाते तो उनका नुकसान ये होता है कि वो कुछ समय के बाद अपने अपराधों की श्रृंखला में स्टॉक में वृद्धि कर लेते हैं और फिर इतने सारे अपराधों के बाद जो है उनको उस पद को या यूं कहें भक्ति को ही छोड़ना पड़ता है। पद को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, कई बार पद छोड़ना या छूटना या छुड़ा देना ये एडवांसमेंट का साइन होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत जो भगवान ने जो क्रिएशन भी करी और उस क्रिएशन में ब्रह्मा जी इत्यादि को भी जो पद दिए तो भगवान उनसे भी ये अपेक्षा करते हैं कि इसको संसार को ठीक चलाएं। शिरोदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु जिन्होंने इतना काम किया ना सारा संसार के प्रति करी जीवों के प्यूरिफिकेशन के लिए, वो चाहते हैं कोई व्यक्ति तो मिले जो ढंग से सेवा करे, तो जो ठीक ढंग से सेवा करते हैं फिर भगवान की उनको अपार कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी को तो भगवान ने यह भी कह दिया कि अगर तुम मेरे निर्देश के अनुसार जो कि बड़ा मुश्किल है संसार में क्रिएशन करना और मैनेजमेंट करना तुम करोगे तो अंत समय में आप कौन हो, क्या आपका स्वरूप है, मेरे साथ में आपका क्या संबंध है आध्यात्मिक जगत में, वो आप रियलाइज कर लोगे। श्रीमद् भागवतम स्कंध एश्योरेंस दे रहे हैं भगवान। तो कई बार जीव भगवान की इन सेवाओं को देखिए ना, कितना बड़ा मैनेजमेंट चाहिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए। बलराम जी मैनेज कर रहे हैं इतने सारे एक्सपेंशन के साथ, अगर भगवान भी अपना मैनेजमेंट छोड़ दें तो क्या होगा, आप कोर्ट केस ही करते रहो, बस ये हो गया, अब ये हो रहा है, अब ये हो गया, नहीं ले रहे भगवान अवतार, कर लो जो करना है, लड़ते रहो मरते रहो खत्म हो जाओ। नहीं, भगवान को अपना पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखना है। बांसुरी बजा रहे हैं वो, लेकिन जो बांसुरी की तान है वो हर व्यक्ति को अलग सुनाई दे रही है, बलराम जी को अलग सुनाई दे रही है, ब्रह्मा जी को अलग सुनाई दे रही है, शिव को अलग सुनाई दे रही है, हाँ मेरे को डिसॉल्व करना, सब कुछ खत्म करना, ये सब डिस्ट्रक्शन करनी है। गोपियों को अलग सुनाई दे रही है कि हाँ जी चलो मिलने चले, है ना, शेष को अलग सुनाई दे रही है झूम रहे हैं, है ना, जीवों को अलग सुनाई दे रही है, हमें तो सुनाई नहीं दे रहे, हमें फिल्मी सॉन्ग के रूप में सुनाई दे रही है। तो हर जीव जो है अलग अलग ढंग से अट्रैक्ट हो रहा है भगवान से। तो ये जो वंशी बजा रहे हैं, ये वंशी के अंदर पूरा मैनेजमेंट है भगवान का। गोपी मैनेज करती है घर में कैसे निकलना है, कैसे भागने मिलने, खाली बांसुरी। तो वीणा बजाना इतना आसान नहीं है, है ना, भगवान की वीणा जो है सबको आकर्षित किए हुए हैं, तो उस वीणा में जो है सब कुछ है, पूरा सार है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का बलराम जी के द्वारा मैनेजमेंट है। तुलसी महारानी, वृंदी देवी तुलसी महारानी की, इनका इतना बड़ा मैनेजमेंट चाहिए, इतनी सारी कंडीशन हो, जब से स्कॉन खोला है और मठों में जो भक्ति हो रही है तो उसके द्वारा जो बहुत सारी कंडीशन हो रहा प्यूरिफाई हो रही है आध्यात्मिक जगत में जा रही है, तुलसी महारानी क्या कर रही है, उनको अंगेज कर रही है। सेवाधिकार दिए कर निज दासी, हमें जो है क्या कीजिए, सेवा का अधिकार दीजिए, कोई सेवा दीजिए। पूरी तुलसी आरती में आप देखेंगे तो पहले कह रहे हैं कि हमें ब्रज में धाम में वास दीजिए, फिर क्या है, मोर ए अभिलाष विलास कुंज दिए वास, फिर क्या करना वहां, नयन हेरी वो सदा युगल रूप राशि, कि राधा और कृष्ण का मैं युगल रूप को देख सकूं मैं वहां पर, खाली कृष्ण नहीं देखना चाहते, युगल रूप राशि। गौड़िया वैष्णव इसलिए जो चित्र भी कई बार देखेंगे, हम लोग प्रयास यही करते हैं कि कृष्ण का अकेला चित्र ना हो, या कई बार लोग बोलते हैं बाकी बिहारी नहीं जाते क्यों मना करते हो, सुना है, तो यही बताते हैं कि क्योंकि वहां पर श्रीमती राधा रानी साथ होने चाहिए, हम लोग राधा कृष्ण को इकट्ठा देखना चाहते हैं गौड़ी वैष्णव, क्योंकि हम लोग राधादास हैं अर्थात राधा रानी के अनुगत हैं, हम चाहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, हमारा भाव यह है जो श्रीमती राधा रानी का भाव है, कि जो मंजरियों का भाव है कि वो सब श्रीमती राधा रानी को और कृष्ण को इकट्ठा देखना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है जब राधा उनके साथ है और राधा पूर्ण है जब कृष्ण उनके साथ है। पूर्ण का मतलब है कि वो टॉप मोस्ट ब्लिस जो है उसका सेवन कर रहे हैं। इसलिए कई लोग पूछते हैं आपके मंदिरों में राधा रानी साथ में खड़ी होती है, या कहीं पे हम राधा रानी को क्यों साथ देखते हैं, रुक्मणी को क्यों नहीं साथ देखते। हम बोलते हैं इनको क्योंकि रुक्मणी कृष्ण जी हमारे प्रेसिडेंट है, इसलिए वो ऑलरेडी है यहां पे इसलिए ये जवाब नहीं है। जवाब यह है कि भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है, और श्रीमती राधा रानी में रुक्मिणी भी है, सत्यभामा भी है, मथुरा की गोपियां भी हैं, और वो 30 करोड़ जो डांस कर रहे थे वो भी हैं, क्योंकि सारी की सारी श्रीमती राधा रानी जी की मेंटेलिटीज हैं भगवान श्री कृष्ण को कितनी प्रकार से आनंद दिया जा सकता है। यहां पर इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति एक शादी छोड़कर दूसरी करना चाहता है, क्यों? यार मैं नहीं सह सकता, ठीक है तो दूसरी सह लो, नहीं वो भी नहीं सह सकता इसे तीसरी सह लो। तो व्यक्ति इस प्रकार प्रयास करता है। अब वो भी मेंटेलिटी जरूर ढूंढ रहा है, मेरे को मेरी मेंटेलिटी की मिले, तो मेंटेलिटीज कई तरह की है ना, हमारा तो लिमिटेड मेंटेलिटी है, तो इसलिए लिमिटेड शादियां करता रहती है। हम भगवान की अनलिमिटेड मेंटेलिटी है, राधा रानी भगवान का भाव समझती है, हृदय जानती है, इसलिए जितनी प्रकार की मेंटेलिटीज हो सकती हैं, अनलिमिटेड मेंटेलिटीज, अनलिमिटेड गोपीज, अनलिमिटेड एक्सटेंशन राधा रानी के। इतनी गोपियां क्यों है? इतनी इसलिए भैया क्योंकि भगवान जिस तरह से सोच सकते हैं, जितने तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, श्रीमती राधा रानी का भाव यह है कि मैं उतने एक्सटेंशन लेकर भगवान को आनंद दूं। इसलिए माधुर्य भाव में गोपियों का और कृष्ण का, चंद्रावली का और कृष्ण का, राधा रानी का और कृष्ण का भाव, उनके माधुर्य के जो आपस में डीलिंग्स हैं वो समझना बहुत मुश्किल। हम तो अपराध ही करके वापस आ जाएंगे यहीं पर अपराध करके, सर यहीं रहेंगे, ऊपर तो जाएंगे नहीं, अपराध करने थोड़े जाएंगे ऊपर, इधर से अपराध करते रहते हैं, ये हो गया, ऐसा हो गया, नहीं भगवान एक्चुअली ये चीज ऐसी भी नहीं कि आप किताबें पढ़ के समझ जाओगे। बड़ी सारी संस्थाएं किताबें पढ़ पढ़ के, इधर पढ़ ये पढ़ वो पढ़ बोलते रहते हैं, बड़ा कुछ बताते हैं, ये ऐसे नहीं आते समझ ये चीज, आप वैसे समझ जाओगे दो और दो चार होता है, लेकिन नहीं, ये चीजें तो हृदय में प्रकाशित होती है। जब बर्तन रगड़ने पड़ते हैं, टॉयलेट साफ करने पड़ते हैं, मंदिर में मार्जन करना पड़ता है, भगवान के गुरु के जो चित्त हैं उनकी जो मनोभाव हैं उससे अपना मनोभाव जोड़ना पड़ता है। उनके मन में क्या चल रहा होगा, वो मुझे कैसे पसंद करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, तो जो है लिंक बनेगा आपस में, ऐसे फिर ट्रांसफर होगी ऊपर से नीचे चीज। हम लोग हमेशा ऐसे रहते हैं देख रहे कोई लिंक ही नहीं। एक बड़ा सुंदर एग्जांपल दिया था इस बात में, जिसने दिया था वो आज मोमेंट में नहीं है, क्योंकि वही अहंकार अनर्थ इत्यादि कि हो सकता है कि रेलवे स्टेशन पे आप देखें कि एक बहुत बड़ा इंजन खड़ा है और उसके पीछे काफी सारे डब्बे खड़े हैं, और उसी इंजन के पास साथ वाली पटरी पर एक नया डब्बा खड़ा है बिल्कुल एसी, और वो उसको इस बात का गर्व है, देखो मैं कितना पास खड़ा हूं इस इंजन के, मैं ऐसे ऐसे नहीं बनाया इंजन, क्या क्या लगा है देखो, अंदर पेनेट्री भी अंदर है, सिस्टम भी अंदर है, एसी लगा हुआ है। लेकिन जब चलती है ट्रेन उसको चिड़ा रहा था, तुम कहां कोने में कुछ भी नहीं किया आपने, वो सारे के सारे डब्बे इंजन के साथ चले जाते अपनी डेस्टिनेशन, कनेक्टेड है, ठीक है ना, कनेक्टेड है क्योंकि ट्रेन से सारे चले गए साथ, और वो डब्बा कहां रह गया, वो वहीं खड़ा है। तो जब तक व्यक्ति अपनी अथॉरिटी, अपना गुरु और अपने कृष्ण से अटैच कनेक्टेड नहीं, गुरु परंपरा से उसके द्वारा किए गए जितनी मर्जी वो साथ सज्जा कर ले उस डब्बे की, उसका कोई फायदा नहीं। इस मोमेंट में हमारे काफी ऐसे, मुझे क्या बताएं, इतने देख चुके हम लोग इंसिडेंट्स, वास्तव में जब रियलाइज करते हैं इन सब चीजों को आंखों से देखते तब मालूम पड़ता है ओहो कितना मुश्किल है वास्तव में। आप व्यक्ति को समझाते रहिए, गुरु पर लेक्चर दे दीजिए, फिलॉसफी समझा दीजिए। ये बड़ा छोटा सिद्धांत है कि हमें गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन पूरा जीवन, कई जीवन लग जाते हैं व्यक्ति को अपने गुरु को प्रसन्न करने में। वो तो डायरेक्ट कृष्ण को प्रसन्न कर राधा रानी को भी हटाकर कृष्ण से चिपकना चाहते हैं। कुछ ऐसा कराओ, क्या करना है? दूध पीकर मैं तपस्या करूंगा? तो भाई तू जितना मर्जी दूध पीते वो गाय बनना पड़ेगा तुझे। कोई यूज नहीं है ऐसी तपस्या का। हमारे मंदिर में ही बोलना नहीं चाहिए, बट बड़े बड़े भक्त रहे हुए हैं जिनका बड़ा मान सम्मान हुआ है इस मूवमेंट में, बड़ा काम किया उन लोगों ने। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ अच्छी अच्छी तपस्याएं भी करी, बट उन तपस्याओं के पीछे मन में क्या था वो पूरा होगा। भाव क्या था आपका वो पूरा होगा। फिर कुछ समय के बाद आप कुछ तपस्या करिए, आप एक पैर पर खड़े हो जाओ, 50 लोग आपको पूछने को एक पैर पर खड़े हो, आप महान भक्त हो। और गुरु के कहने पर एक व्यक्ति भी 16 माला जप कर रहे हैं, जो उसे एक्सपेक्ट किया जाता वो कर रहा है उतना, चाहे छोटा चाहे एक ही घंटे की सेवा उसकी, बट वो कर रहा है। और वो जो है एक पैर पर खड़ा है पिछले कई दिनों से, या एक पैर का मतलब समझ रहे हैं, अपने मन से कुछ कर रहा है और उसमें उसको बड़ा आनंद भी आ रहा है। लोग गारंटी सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, ICO है ना, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि यस यू आर वेरी गुड डिवोटी, अदर आर नियोफाइट। तो ये जो मान सम्मान एप्रिसिएशन मिलता है ये हमारा सबसे बड़ा अनर्थ है। ये ऐसे जाके दिल में हृदय में बैठ जाता है और केवल ये ढूंढता है ये, हाँ ये मुझे अप्रिशिएट करेगा, ये मुझे अच्छा बोलेगा, ये मेरी सेवा को देखेगा। और गुरुजन वो चला ना जाए, इतना भी ना छोड़ दे, पुण्य इकट्ठे कर रहा है कई साल से कर रहा है, चलो फायदा तो होगा ना कई जन्मों बाद, नो प्रॉब्लम। तो गुरुजन उसको कहते हैं चल लगा रहे तू कर, मनमानी करता है व्यक्ति। हमने देखा है स्पिरिचुअल मास्टर के पास भी जो है डिसाइपल्स पहुंचकर अपनी मन की बातें मनवाने जाते हैं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ये करना शुरू कर दूं, महाराज क्या करेंगे, मना करेंगे? महाराज मान लो इसको इतना नियोफाइट ऐसी इतनी कंडीशनिंग है, इसने अभी ABC तक ढंग से नहीं सीखी कि गुरु के पास अप्रोच कैसे करना चाहिए, गुरु से इच्छा क्या करनी चाहिए। मतलब ये बोलो कि मैं क्या करूं, मैं भक्ति में और आगे कैसे बढ़ूं, मैं आपकी सेवा और कैसे कर सकता हूं, आप बताएं, मैं बताऊंगा वो मुझे आगे, तो गुरु के गुरु बने हुए तुम। मेरे लिए क्या अच्छा है ये मैं बताऊंगा, मैं ऐसा करूंगा जी आज। बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तब भूत न पाए कृष्ण पदे करूंगा। जितना भी श्रवण कर लें, कीर्तन कर लें, तपस्याएं कर लें, इतना छोटा सा सिद्धांत नहीं समझ आया अगर, तो पतन निश्चित है। पतन का मतलब है कि हो सकता है आप मोमेंट में टाइम भी बिता लो, तो कुछ आपके डिसाइपल भी बन जाए, क्योंकि यहां पर तो जैसे भारत देश में कोई भी व्यक्ति अगर कोई संस्था खोलता है 20-50-100 पकड़ लेते हैं, नहीं हमारे गुरुजी नाना प्रकार के ग्लासेस पीछे लिखा होता है, ये वाले गुरुजी, वो वाले गुरुजी। आप भी कुछ खोलो संस्था, आपके भी शिष्य बन जाएंगे, दीक्षा ही तो देनी अपने, सब दीक्षा मांग रहे होते, हमारे पास भी होते ब्रह्मचारी के पास लोग, आपसे दीक्षा देनी चाहिए, आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हो। फिर हमसे हाँ मैं भी शिष्य तो बना सकता हूं, कितने लोग मेरी बात को फॉलो करते हैं, लेकिन यहां तो 40-50 साल के बाद ही नंबर आएगा, पता नहीं कब मुझ पर कमेटी बैठेगी जब मेरे कामों को देखेगी, उसके बाद कहीं संन्यास मिलेगा 40, और उसके बाद भी पता नहीं कब दीक्षा देने का अलाउ किया जाएगा। नहीं इधर नहीं, कहां मिल सकता है संन्यास जल्दी? अच्छा उधर चलता, उधर संन्यास जल्दी मिल जाता है। ठीक है आप मुझसे जुड़े रहो, आपको मैं जैसे जैसे बताऊं वैसा करो, यहां पर और किसी से फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं, और आप जो है मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी दीक्षा दूंगा आपको। और फिर वो गुरु बनने की इच्छा है व्यक्ति कहीं और जाके पूरी करता है। तो इसलिए भक्तों को हमेशा जमीन पर रहना चाहिए। एक बड़ी सुंदर स्टोरी सुनाई थी एक बार जी ने, इसमें एक व्यक्ति जो है बड़ा गरीब व्यक्ति होता है और अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से वो राजा का वजीर बन जाता है। फिर जितने साथ के लोग थे सब कलपते थे उससे, सब चिढ़ते थे, ये ऐसा कैसे इसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी, कितना ऊंचा हो गया। और फिर क्या देखते थे कि रात को ये कहीं जाता है कमरे में और एक खतरनाक बड़ा सा संदूक रखा है, उसको खोलकर उसमें कुछ डालता है, कुछ करता है। तो राजा को बताया कि महाराज आप जिसे इतना ईमानदार समझते हो, आपको मालूम है इसने घर में क्या रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, उसने बहुत बड़ा संदूक रखा है, यहां से सारी चोरियां करके उसमें डालता है। अच्छा, सबने कहा खोलो उसको। नहीं नहीं नहीं, खोलो मत खोलो, खोलो उसको। खोलते तो क्या देखते, राज्य में जिस दिन उसको पहली जॉब मिली थी उस समय जो उसने कपड़े फटे हुए मैले पहने थे, जो पैंट उसने गंदी से पहनी हुई थी धोती, जो चप्पलें उसकी फटी हुई थी छेद हो रखे थे बड़े बड़े, जो लाठी उसके पास थी वो था, वो रोज उसका दर्शन करता था। महाराज कहते ये सब क्या है? उसने कहा महाराज ये वो चीजें हैं जब मैं आपके राज्य में आया था उस समय मैंने पहनी थी, और आज मेरा पद इतना ऊंचा हो गया, मेरा इतना कहना माना जा रहा है, मेरे को इतना वो है, तो मैं अपनी औकात ना भूल जाऊं, मैं अपनी स्थिति ना भूल जाऊं मैं क्या था और आज क्या हूं, उसकी वजह से मुझे कहीं अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं रोज इसका दर्शन करता हूं अपने को ये याद दिलाने के लिए वास्तव में मेरी क्या औकात थी। लेकिन इसलिए हमको चाहिए कि व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने सुंदर मुरली कृष्ण को ने यहां पर पढ़ा था उस चैप्टर को, पूरे पेज को, तो प्रभुपाद जी कह रहे कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस मोमेंट ने हमें क्या दिया, क्या थे, किस स्थिति में थे, कहां डूब रहे थे, आज भक्तों के संग से इस मोमेंट में हम लोगों को कितनी हमारी आदतें छुड़वा दी, क्या हमारी प्रोग्रेस हुई है, उसको भूलना नहीं चाहिए और लगे रहना चाहिए। तो इससे जो है हम लोग हमारी चेतना का फायदा होगा। इसलिए इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि सारे के सारे भगवान की सेवा कर रहे हैं, और जब सेवा की जाती है सेल्फलेसली, जिस सेवा के पीछे हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई अपना मोटिवेटेड नहीं होती, कहने का मतलब है कि हमारी कंडीशनिंग के कारण कोई उसके पीछे हमारा हेतु नहीं होता, अहेतु की, अहेतु का मतलब कि उसमें हमारा कोई भाव नहीं है कि मेरी कोई तारीफ करे बाद में, या उसके बाद मुझे ये पद मिलना चाहिए, उसके बाद जो है फिर ये हो, फिर वो हो, फिर ये हो। तो जब इस प्रकार सेल्फलेसली सेवा की जाती है तो वो की गई सेवा एक्सेप्ट होती है, या हमारा तेजी से शुद्धिकरण करती है। ज्यादातर सेवाएं हमारा जो है हमें पुण्य दिलाती हैं, क्योंकि उसमें सबके पीछे हमारा हेतु होता है, मैं ये कर रहा हूं से ये मिले, मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला ये अच्छा हो जाए बस, हाँ तो ये सब हेतु है। तो इस प्रकार हम सब लोग सेवा के भाव से जुड़े रहते, उससे जुड़े रहते हैं कि इसके पीछे मिलेगा क्या। इस वजह से कंडीशन सोल जो है भक्ति शुद्ध भक्ति करने की जगह, अच्छी भक्ति करने की जगह वो इतने सारे हेतु के साथ जब सेवा इत्यादि करता है तो क्या नुकसान होता है उसका, कि जहां पर वो शुद्ध भक्ति कर सकता था उसकी जगह केवल पूरा जीवन वो पुण्य इकट्ठे करता रहा। नुकसान नहीं है उसका, पुण्य इकट्ठे हुए और उस पुण्य के बेसिस पर फिर उसको कहीं ना कहीं दोबारा जन्म मिलेगा, उस पुण्य के आधार पर फिर कहीं देवता बनेगा या भगवान के पास, सॉरी भक्तों के बीच में दोबारा आएगा। तब तक जब तक कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यस्य अर्थात गुरु स्टैंप ना लगा दे ओके टेस्टेड की हमारे ऊपर चेक, आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। तो इसलिए बलराम जी के जीवन से, बलराम जी की कथा से, क्योंकि वो गुरु का है, जो हमारे गुरु हैं वो उनका ही एक एक्सटेंशन है कह सकते हैं, उनके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो बलराम जी सदैव हमारे साथ हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हमें, ये करो ऐसा करो। हमें वो बलराम जी से अलग दिख रहे हैं, एक हार्ड मास का पुतला दिख रहे हैं, हमारी तरह एक जीव दिख रहे हैं, ये हमारी कंडीशन है। इसलिए अगर भगवान भी हमारे सामने आ गए तो हम कुछ नहीं कर सकते, आएंगे नहीं पहली बात। तो इसलिए बलराम कथा या बलराम जयंती का जो असली उत्सव का मतलब है वो ये कि मेरी परसेंटेज ऑफ सरेंडरनेस टुवर्ड्स माय गुरु मस्ट इंक्रीज, बढ़नी चाहिए। कितने फेस्टिवल मना लेंगे और 20-30 जाने अपने अपने अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग। परसेंटेज ऑफ सरेंडरनेस बढ़ना चाहिए गुरु के प्रति, अथॉरिटी के प्रति। कोई ये ना सोचे कि उसका टॉर्चर हो रहा है, उसको टॉर्चर किया जाएगा। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है तो उसका मतलब उसके फंडे क्लियर नहीं है, उसको 7 डे सेशन का दूसरा सेशन करना चाहिए। डज गॉड रियली एग्जिस्ट, कि भगवान है या नहीं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे पर जाति हो रही है, मेरे साथ ये कर दिया, मुझे ज्यादा सेवा दे दी, मेरे को ये हो गया, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। अगर करते हैं तो उनको दिखाई नहीं देते, उनकी आंखें ठीक नहीं है, चश्मा नहीं लगाया उन्होंने। और अगर चलो ठीक है आंखें, लेकिन वो परमात्मा के रूप में तो कम से कम हृदय में नहीं है। तो इस प्रकार हम भगवान को गुण से विहीन कर देते हैं, उनके गुणों से विहीन कर देते हैं, और फिर ऐसे कैसे भगवान को पूज रहे, है ना। तो इस प्रकार हम लोगों को चाहिए भक्त बने अच्छे, भगवान को रियलाइज करने का प्रयास करें, शक्ति को प्रयास करें समझने का। एक जीवात्मा के साथ कभी भी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, सारे के सारे उसके कर्म हैं, उसकी मेंटेलिटीज हैं, उसके मन के विकार हैं जो उसको परेशान करते हैं। तो अपने मन से ना चलें, अपनी बुद्धि से ना चलें, और हमें चाहिए कि जिसकी बुद्धि और मन ज्यादा भगवान में लगा हुआ उसकी बुद्धि से चलें, अर्थात जो अथॉरिटी या गुरु है उनकी वजह से। हमारी कंटेमिनेटेड बुद्धि और मन हमें गलत चीज ही बताएगी और गलत चीज ही करा देगी। असत संग त्याग अहि वैष्णव आचार्य, व्यक्ति को चाहिए वो असत संग का त्याग करे। असत संग का मतलब होता है जब जो व्यक्ति हमको अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन से दूर करता है वो असत संग है। पता नहीं मैं सुना ही नहीं सुना, मैं वैसे ही बोल रहा हूं, बट रियलिटी यही है। क्योंकि गुरु की इंस्ट्रक्शन भगवान की इंस्ट्रक्शन है, जो भगवान का भाव है। तो जो व्यक्ति, जो सेंस ऑब्जेक्ट हमें गुरु के निर्देशों से उनके पालन करने में ऑब्स्टेकल है, बाधक है, हमें उस पर त्याग करना चाहिए, ऐसे संग का त्याग करना चाहिए, और गुरु के चरणों में गिरना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेटना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, टकरे मारनी चाहिए जमीन पर, तो पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना है, प्लीज बताइए, इतना मैं ये कर लूं, ये नहीं, ये पूछें मैं क्या करूं, किसको फॉलो करूं। आपको जिसको कहा फॉलो करने के लिए, और हो सकता है कि वो खुद कल को, हो सकता है कि घटना के वश मान लो आपको लगे ऐसा कि नहीं, ये जो है जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं मेरा ऐसा बन नहीं रही, ये मैं ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहा इनको, तो ये हमारी गलती है, हमें फिर भी फॉलो करना है। क्योंकि जब गुरु ने आदेश दे दिया है तो फिर वो सब कुछ स्पिरिचुअलाइज हो गया, प्रमाणिक गुरु की बात हो रही है। इसलिए जितना जल्दी तत्व को समझ जाए उतना जल्दी उतना ज्यादा हमारा फायदा है। पूरा का पूरा सिस्टम मैनेजमेंट कर रहा है, हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, हर व्यक्ति को चाहिए कि सेवा करे, बट सेल्फलेसली, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। फिर जो है हमारा शुद्धिकरण बहुत तेजी से, और तेजी का मतलब यही कि शायद इसी जन्म हम लोग रियलाइज कर पाएंगे हु एम आई, व्हाट इज माय स्वरूप। कृष्णा विल रिवील एवरीथिंग, क्योंकि परमात्मा रूप में हृदय में है, हमको वो सब कुछ रिवील कर देंगे। भक्ति मर्सी या कृपा जो है भगवान देंगे हमें, ठीक है ना। हरे कृष्ण बोलो। श्री श्री कृष्ण बलराम की, ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की, पिताय गौर प्रेमानंदे। Thank you.